जय धवला, पुस्तक 11वी, लेक्चर नंबर 13।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वैचायानं, नमो लोए सौवसाऊनं, वेदकवेदकवेदकं, अवेदकं वेदकं, ततं सिद्धं सिद्धं पणनीय शिरसा, वोच्चं वेदगमाहि
आरमं। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पौढ़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीश्व आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 103 पर आ गए हैं। यहाँ अपना अंतर की बात चल रही थी, उत्कृष्ट का अंतर देखा हमने, जघन्य का भी अंतर देख लिया, उसमें ओग से देखा था, अभी आदेश से देख रहे थे, और नारकियों की बात हमने पढ़ी थी, उसी का विशेषार्थ देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नरक में मिला ना 103 पर नीचे का पैराग्राफ विशेषार्थ का, नरक में प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति के जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल को ध्यान में रखकर यहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्टों के जघन्य अनुभाग के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 7 दिन रात कहा। इन्हें औपचारिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अंतर, यानी उतने दिन में कोई ना कोई वहाँ प्रथम उपशम प्राप्त करेगा ही करेगा, हाँ, यानी कोई ना कोई जघन्य करेगा ही करेगा, ये बात है। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है यहाँ पर, एक जीवों की अपेक्षा तो पल्ले का असंख्या तो भाग काल अंतर पड़ता है। हाँ, किसी ने प्रथम उपशम किया, प्रथम उपशम करने के अवली और एक समय पहले मिथ्यात्व के लिए और अनंतानुबंधी के लिए अंध समय में उसका जघन्य होता है, तब उसकी जघन्य उदीर्णा की चालू हो जाती है। अब किसी ने प्रथम उपशम समय तो प्राप्त किया, फिर एक समय के लिए कोई उस समय में नहीं आया है, हर एक का अलग अलग लेना, मिथ्यात्व का अलग, अनंतानुबंधी का अलग, फिर किसी और जीव ने प्रथम उपशम प्राप्त किया, तो जघन्य का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक समय हुआ। अब लगातार 7 दिन रात चले गए तो अंतर, हाँ मैक्सिमम काल इसका, हाँ हम तो उल्टा अर्थ है कि 7 दिन में कोई ना कोई करेगा ही करेगा, यानी इससे बड़ा अंतर नहीं हो सकता, इसका अर्थ प्रथमोक्षम समय, और वो भी नरक की बात चल रही है। यही है, यही है। हाँ, तथा कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल को ध्यान में रखकर, यहाँ भी एक समय के अंतर से उत्पन्न हो सकता है कोई, यहाँ आ सकता है मनुष्य में मरकर, और कृतकृत्य वेदक उसने किसी ने जघन्य किया, एक समय के लिए कोई नहीं था, फिर किसी ने किया तो अंतर एक समय होगा, और उत्कृष्ट अंतर हमने कितना देखा था, वर्ष पृथक तो देखा था, ऐसे दर्शन मुखी क्षपणा का अंतर 6 महीने ही है, परंतु ये नारकी में लगाना है, यानी कृतकृत्य में मरना चाहिए और मरकर नरक में आना चाहिए, दोनों ही बात। इसका अर्थ ये भी होता है वर्ष पुस्तक में तो कोई ना कोई क्षायिक समय दृष्टि नरक में जाएगा ही जाएगा क्षायिक पूरा करके नहीं यहाँ तो कृतक होते वेदक की परंतु हम उसको क्षायिक तो कहेंगे ना अभी क्षायिक की तो उसने प्रोसेस से चालू हो गया उसका शेष कथन सुगम है हमने बाकी ऊपर पढ़ाया था यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि द्वितीय आदि पृथ्वियों में कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होते इसलिए उनमें सम्यक्त्व का भंग कषायों के समान बन जाने से उनके समान कहा है ऊपर जो हमने देखा था दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक का भंग कषायों के समान है तो कषायों में क्या लिखा लिया था हमने एक समय से उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण अंतर्मूर्त वाला वो
अच्छा ये विशुद्धि क्या हाँ,
वो बात यहाँ नहीं होती ये अजगण्य के लिए होगा अजगण्य के लिए तो अंतर ही नहीं होगा अजगण्य का तो हमेशा ही रहेगा
निरंतर
हाँ। सम्यक्त्व का अजगण्य कौन करेगा समय दृष्टि जो अधिक से अधिक विशुद्धि वाला है ये अंतर्मूर्त वाला आपको ये याद है वो एक दिन की अपेक्षा बात है अब तिर्यंचों में देखेंगे हम तिर्यंचों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग नारकियों के समान है वही सम्यक्त्व के लिए कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से जघन्य अंतर एक समय होगा उत्कृष्ट अंतर सात दिन रात होगा सॉरी वो मिथ्यात्व में होगा सात दिन रात सम्यक्त्व में जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर हाँ वर्ष पुस्तक सम्यक मिथ्यात्व का भंग
एक समय से लेकर पल्ल्य शासन करता था नहीं एक समय
उसमें भी ऐसा लिया था एक समय और असंख्यात लोग नहीं एक समय और
नहीं
ओग के समान है बरोबर ओग के समान लिया था ओग में हमने लिया था 102 पृष्ठ जघन्य की बात असंख्यात लोक प्रमाण लिखा एक समय से असंख्यात लोक शेष प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है उसका भी जघन्य करने वाले कौन हो गए हाँ सेम सेम अजघन्य अनुभाग के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि अपना अपना वेद जान लेना चाहिए योनिनी तिर्यंचों में सम्यक्त्व का भंग कषायों के समान है एक समय से असंख्यक लोग नाना जीवन की अपेक्षा चल रही है विशेषार्थ तिर्यंचों में यद्यपि तिर्यंचों में मिथ्यात् और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य अनुभाग उदीर्णा का स्वामित्व संयम के ओहो यहाँ
मनुष्य
असंख्यात लोक लिया मिथ्या तो कहना ये इन्होंने कहाँ लिया था मिथ्या तो कहना शेष में सम्यक सम्यक मिथ्यात्व को अलग लिया और सभी शेष अलग अलग किया। ओ बराबर है। नारकियों में क्या होता है, प्रथम उपशम सम्यक को लेना है, यहाँ सात दिन रात नहीं लेना है
मनुष्य और केवियत से।
यहाँ तो पांचवें गुणस्थान के सम्मुख वाला वेदक सम्यक में जो मैक्सिमम विशुद्धि करेगा उसकी बात है। बात सही है, शेष में मिथ्यात्व को लेना ना। हाँ, मिथ्यात्व के लिए भी एक समय से असंख्यात रोग होगा। अधिक से अधिक असंख्यात लोक प्रमाण। मैंने भूल से वो उसको भी सात दिन रात बताया था, वो बात नहीं, बात क्योंकि वो प्रथम उपशम सम्यक तो नहीं लेना है वहां पर। देवों में और नारकियों में प्रथम उपशम सम्यक के पूर्व और तीरियंसों में पांचवें गुणस्थान के सम्मुख और मनुष्यों में सातवें के सम्मुख वेदक सम्यक और मैक्सिमम विशुद्धि के साथ। और बाकी कषायों में वगैरह असंख्यात लोक प्रमाण तो घटित होता ही है होने में। पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। यहाँ तो सभी लेना है क्योंकि सम्यक समय मिथ्यात्व की उदीर्णा का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। तो शेष सभी प्रकृतियों का जघन्य, जो मिथ्यात्व का भी जघन्य, जब उसकी विशुद्धि मैक्सिमम होगी तब लेना है। अजघन्य अनुभाग के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, इनके अजघन्य अनुभाग के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। ये मार्गणा का अंतर लिया मनुष्य अपर्याप्त। मंजू बेन ख्याल में आई बात, देखो मनुष्य अपर्याप्तों की बात चल रही, तो मनुष्य अपर्याप्तों में अभी हमने पढ़ा ना, इसी प्रकार जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, जैसे पंचेंद्र तीरियंच अपर्याप्तों में समझा, क्या समझा था, एक समय से अधिक असंख्यात लोक प्रमाण काल नाना जीवन की अपेक्षा। अब कहते मनुष्यों में भी ऐसे जान सकते हो आप, परंतु वहाँ वो तो जघन्य के लिए इतना उत्कृष्ट अंतरकाल बताया, अजघन्य के लिए तो अंतरकाल नहीं है ऐसा कहा। इसमें पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्तों में सभी प्रकृतियों के अजघन्य अनुभाग उदीर्णा तो हमेशा ही होगी, उसमें कोई दाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा हमने कषाय में देखते हैं कि हम अंतर्मूर्त पलट कर आता है, उतना अंतर होता है। यहाँ वो बात नहीं है, नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। तो वो मार्गणा तो निरंतर है, पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्त हमेशा ही पाए जाएंगे और उनमें अजगण्य की उदीर्णा करने वाले भी हमेशा हो गए। मनुष्य अपर्याप्तों में जब जीव हो गए तब अजगण्य की उदीर्णा करेंगे, परंतु कभी वो उस मार्गणा हो तो ऐसी शांतर मार्गणा है, ऐसा होता है कि उस अवस्था वाले कोई जीव ही नहीं है कुछ काल के लिए, तो जघन्य अजघन्य कुछ भी नहीं होने, यानी कोई होने का सवाल ही नहीं है। तो जघन्य के लिए तो हमने असंख्यात लोग देखा था, परंतु अजघन्य में जब जीव उस मार्गणा में हो गए तब अजघन्य करेंगे, परंतु पल्ले का असंख्यात भाग काल तक कोई भी उसमें नहीं है ऐसा हो सकता है। तो नाना जीवन की अपेक्षा एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात भाग तक मनुष्य अपर्याप्त मार्गणा का ही अंतर है, इसलिए अजघन्य का भी अंतर का मार्गणा अगर निरंतर होगी तो अजघन्य हमेशा पाए जाते हैं। ख्याल में ही बस। अब देवों में दर्शन मोहनीय तीन और अनंत अनुबंधी चार का भंग नारकियों के समान। तो हमने क्या देखा था, दर्शन मोहनी में पहले मिथ्यात्व की बात कर, देवों में मिथ्यात्व का जघन्य कब होगा, प्रेरणा देने मिथ्या तो क्यों हुई ना, तो मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि लेनी है, कब होगी ज्यादा से ज्यादा। हाँ हाँ, किस किस समय को के साथ? बहुत देवों में और नारकियों में प्रथम ऑप्शन समयत्व के साथ जाने वाला है। तो प्रथम स्थिति में जो आवली प्लस एक समय बाकी रहता है, तब उसकी लास्ट उदीर्ण है, बाद में उदीर्ण रुक जाती है, तब उसके जो जघन्य अनुभाग उदीर्ण है। अनंतानुबंधी को भी प्रथम ऑप्शन में ही लेना, परंतु वो मिथ्यात्व का अंतिम समय लेना। क्यों? मिथ्यात्व में तो हमने आवली और एक समय पहले देखा, अनंतानुबंधी में तो अंतिम समय करण लब्धि का लिया, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा, उसमें अंतर नहीं होता। उपशम जो है अलग अलग उपशम है, मिथ्यात्व का उपशम होता है तो उसमें अंतरकरण करके उपशम, जिसको प्रशस्त उपशम कहते हैं, और अनंतानुबंधी में अप्रशस्त उपशम है। तो मिथ्यात्व का अंतर कितना पड़ेगा नाना जी उनकी अपेक्षा? मिथ्यात्व के जघन्य का मिनिमम अंतर तो एक समय, और अधिक से अधिक असंख्यात लोग को। आप क्या कहते हैं मंजू बहन? हाँ बोलो। मिथ्यात्व के जघन्य का उत्कृष्ट अंतर, मिथ्यात्व की जघन्य उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतर। हाँ देवो में, हाँ नाना जी उनके बोलो। आसान है बहुत। हाँ नहीं नहीं अंतर में कोई ना कोई जीव प्रथम उपशम प्राप्त नहीं करेगा तो कितने दिन नहीं करेगा? 7 दिन रात। अभी हमने नारकियों में पढ़ा था ना, इसलिए वहां तो नारकी के समान लिख दिया। हम पढ़ेंगे ना, फिर याद करेंगे क्या पढ़ा था हमने। तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अंतर नाना जी उनकी अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा कितना अंतर देखा था पल्ले का संख्या था। यानी मिथ्यात्व के बारे में 7 दिन रात। अब सम्यक्त्व का देखेंगे। देवों में इन जनरल पहले बात चले, देवों में सम्यक प्रकृति का जघन्य कब होता है? कृत्य कृत्य, उसका अंतर कितना होगा एक समय की स्थिति और अधिक से अधिक? जैसे नरक में देखा था। हाँ बोलो अश्विन। वर्ष कृतकृत्य, हमने ये भी देखा कि कृतकृत्य में मरकर आना चाहिए नरक में, जैसे कृतकृत्य में मरकर देव में जाएगा तभी उसमें नाना जीवन की अपेक्षा इतना अंतर हो सकता है, क्योंकि कोई क्षाई करके गया होगा, कोई मनुष्य में ही रहा बाद में गया है, कोई तीरें से मनुष्य में गया, चारों गति में जाते हैं, तो किसी एक गति में वर्ष पृथक का अंतर पड़ता है। सम्यक मिथ्यात्व में कैसे देखा था हमने? सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य का, जघन्य उदीर्णा का अंतर, जघन्य उदीर्णा कब होती है? तीसरे से चौथे में जाने वाला, उसके अंतिम समय में। तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट एक समय का अंतर तो जघन्य होगा नाना जी उनकी अपेक्षा, उत्कृष्ट अंतर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? क्यों पूर्व कोटि? नाना जी उनकी अपेक्षा बात चल रही है। हाँ नहीं नहीं हाँ वो पल्ले का तो अजगण्य में लगाएंगे, हम जघन्य की बात कर रहे हैं। असंख्यात लोग देखो, हमने ओग में भी देखा था ना, और वहां ओग के समान देखा था हमने। नारकी में लिखा था ओग के समान, 102 पेज पर हमने देखा था। हमने नारकी में 103 पर देखा था, परंतु मिथ्यात्व का 7 दिन रात देखा, सम्यक्त्व का वर्ष पृथक्त्व देखा, ये अधिक से अधिक अंतर है, और सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात लोग देखा। अनंतानुबंधी का तो अभी हमने मिथ्या तो जैसे देखा सात दिन रात अधिक से अधिक। अब शेष प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। यहाँ फुल स्टॉप देना। अजघन्य अनुभाग के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है क्योंकि कोई ना कोई जीव ये कषाय उनकी कहो या ये मिथ्या सबकी तो उदीरणा करेंगे ही करेंगे। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्प में जानना चाहिए तथा इसी प्रकार सनत कुमार कल्प से लेकर नवग्रवेक तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्री वेद नहीं है। भवनवासी अंतर और ज्योतिषी देवों में सामान्य देवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व का भंग कषाय के समान है यानी वो कितना होगा अधिक से अधिक असंख्यात लोग जघन्य उदीरणा का
एक समय
और अजघन्य उदीरणा का कितना होगा अंतर मंजुबेन सम्यक प्रकृति के अजघन्य उदीरणा का अंतर कितना होगा देवों में नहीं होगा क्योंकि वेद समय तो अजघन्य की बात तो वेद समय दृष्टि हमेशा ही रहे अरे जघन्य कब कहेंगे हम उसके लिए भवनत्रिक में जघन्य कब कहेंगे समय दृष्टि सर्वविशुद्ध हो जाएगा तब उसमें नाना जीवों की अपेक्षा इतना अंतर पड़ सकता। आगे बढ़े इतनी समझ में आई बात। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में क्योंकि ऊपर हमने ग्रह वेग तक देखा था सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है। उत्कृष्ट अंतरकाल अनुदिश में वर्ष पृथक्त्व और सर्वार्थ सिद्धि में पल्ल के संख्यातवे भाग प्रमाण लंबा काल। बारह कषाय और सात नौ कषायों के जघन्य अनुभाग के उद्गीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। वो तो सब जगह लिया था। अजघन्य अनुभाग के उद्गीरकों का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये ग्रुप इसीलिए अलग निकाला उसमें न मिथ्यात्व न समय मिथ्यात्व न अनंतानुबंधी है तो जो वहाँ जिसकी उदीरणा है उसकी बात कर दी। अभी अपना अंतर का भी प्रकरण समाप्त हो जाता है। अब सन्निकर्ष देखेंगे
22
नंबर 22 पर आ गए ना। अंतर को 21 नंबर दिया था ये 22 नंबर। सन्निकर्ष भाव और अल्पबोध अभी ये तीन रहेगी। सन्निकर्ष दो प्रकार का है जघन्य और उत्कृष्ट। सन्निकर्ष का अर्थ याद है ना एक का उत्कृष्ट रहते हुए अन्य का उत्कृष्ट होगा कि क्या अनुत्कृष्ट होगा। पहले उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात करेंगे फिर जघन्य के साथ अलग से सन्निकर्ष करेंगे। तो जघन्य और उत्कृष्ट उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक ये कौन जीव है संगी पंचेंद्रिय सर्वोत्कृष्ट संकलेश वाला। अब वो 16 कषाय और 9 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है। क्यों? क्योंकि ये तो पलटने वाले है ना इसे कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट से शरस्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। चारों गति में होता है, चारों गति में उत्कृष्ट की बात है, हमने पहले देखा था चारों गतियों में होता है। ख्याल में ये बात, मिथ्यात्व का जहाँ उत्कृष्ट है वहाँ उसके साथ अन्य की बात चल रही है, तो मिथ्यात्व के 16 कषाय और 9 कषाय की बात वहाँ बता रहे हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वो सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट करेगा कि अनुत्कृष्ट करेगा? बंदा भी मंजू बहन क्या कहती होगी? नहीं उन्हें उदीर्णा, सम्यक तो की उदीर्णा किसकी होती है?
आपने बताया ना, हाँ आपने
उन्हें बताया है। बंदा बहन का कन्फ्यूजन हो गया,
होगी नहीं उन्होंने बताया,
होगी नहीं उन्होंने बताया बराबर,
नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं लक्ष्मी ने बताया बराबर,
लक्ष्मी ने बराबर बताया,
हाँ क्योंकि मिथ्यात्व की उदीर्ण है ना, उदय कब होता है? मिथ्या दृष्टि का, और सम्यक प्रकृति की वेदा सम्यक को, तो जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वहाँ सम्यक की होती नहीं, तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का सवाल नहीं है। मैंने ट्रिकी क्वेश्चन
ये श्रद्धा और चारित्र में जब श्रद्धा का उत्कृष्ट होता है तभी चारित्र का भी उत्कृष्ट होगा, ऐसे नहीं।
किसकी बात चल रही है?
ये श्रद्धा गुण की जब मिथ्यात्व की जब उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा होगी।
आप श्रद्धा गुण ले रहे हैं और मिथ्यात्व?
नहीं श्रद्धा गुण नहीं, मिथ्यात्व की बात कर रहा हूँ। मिथ्यात्व का जब उत्कृष्ट अनुभव उदीर्ण होगी तभी चारित्र की उत्कृष्ट होगी, ऐसा नियम नहीं।
वही तो बता रहे, होगी ऐसा भी नहीं, क्योंकि क्रोध की हो रही तो मान माया लोग की नहीं हो रही,
क्रोध की होगी तो,
और क्रोध की हो रही तो उत्कृष्ट भी हो सकती है अनुत्कृष्ट भी हो सकती है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि अनुभाग बंधा देवसाय स्थान अलग है। इसका अर्थ अभी उनके वो बराबर फिट नहीं बैठा, सही बात। यानी हमने देखा कि जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट करता है 16 कषाय 9 कषायों का
अनुत्कृष्ट करता है,
उदीरक होगा भी नहीं भी होगा, अगर होगा तो उत्कृष्ट भी हो सकता है अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। यदि अनुत्कृष्ट है तो कितना होगा? तो शरस्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करता है, यानी उत्कृष्ट से शरस्थान पतित वाला ले लिया। अब सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला, सम्यक्त्व की उत्कृष्ट कब होती है? सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा बराबर है। संकलेश कब है? मिथ्यात्व के सम्मुख वाला अंतिम समयवर्ती वेदक समय दृष्टि। तो कहते वो करने वाला 12 कषाय और 9 कषाय का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक। यदि उदीरक ने क्रोधमान माया लोभ में से किसी का 12 कषाय ने आनंदानुबंधी बिना वाला लिया, क्योंकि सम्यक प्रकृति की जहाँ उदीरना है वहाँ आनंदानुबंधी का सवाल ही नहीं है। और यदि उदीरक
सम्यक तो की उत्कृष्ट तो सम्यक संयम से मिथ्यात्व में जाने वाले की होगी, चौथे गुणस्थान से,
चौथे गुणस्थान वाले से मिथ्यात्व में, क्योंकि संयम से नहीं वो तो सातवें से तो जाता नहीं है,
छठे से ज्यादा,
और छठे से, मगर छठे की विशुद्धि एज इट इज ज्यादा ही होती है, छठे योग्य होगी कि नहीं होगी? और चौथे की एज इट इज कम ही होगी छठे से, और वो भी मिथ्यात्व में जा रहा है।
इसीलिए मैंने पूछा कि
छठे वाला मिथ्यात्व में जाने वाले की, यानी उसकी तो छठे योग्य तो विशुद्धि रहेगी ही रहेगी, वो तो मुनि अवस्था का जीव है, भले वो संकलेश कहेंगे हम मिथ्यात्व के सन्मुख है, अभी मिथ्यात्व में गया नहीं है वो। चौथे में से मिथ्यात्व में जाने वाले से छठे में से मिथ्यात्व में जा रहा है जीव, अंतिम समय दोनों का लेते हैं, तो उसकी इतनी तो कम नहीं होगी, संकोच इतने तो नहीं होगी जो चौथे वाले से होते। हाँ उत्कृष्ट की बात चल रही है। हाँ वेदक समय दृष्टि जब मिथ्यात्व में जा रहा है, क्योंकि सम्यक्त्व की उदीर्णा हो रही है ये तो बात चाहिए, तो सम्यक्त्व की उदीर्णा तो वेदक समय दृष्टि की होती है। अब उसका अधिक से अधिक संकलेश कब है? अभी जो गिरने के समय है, तो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व के सन्मुख वाला जीव लेना है। और वो जीव 12 कक्षा और 9 कक्षा उनका कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, क्योंकि जिसका उदय होगा उसका उदीरक कहलाएगा। यदि उदीरक है तो नियम से, नियम क्या बताया, नियम से अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, उसको कदाचित उत्कृष्ट ऐसा नहीं कहा। क्योंकि उसका उत्कृष्ट कहाँ होगा? यहाँ क्या कहा, 12 कषाय का, 12 कषाय के बारे में बता रहे, जहाँ सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट है तो 12 कषाय का कदाचित उदी रखे, यानी क्रोध का उदय चल रहा है, तो सम्यक्त्व का तो उत्कृष्ट हुआ, और इसका तो नियम बता रहे कि नियम से वो अनंत गुणा अनुत्कृष्ट, अनंत गुणाहीन वाला अनुत्कृष्ट ही होगा, तो उसका उत्कृष्ट कब होगा? मिथ्या तो के सन्मुख नहीं होगा तो कब होगा? मिथ्या तो नहीं होगा, मिथ्या तो में तो 16 कषायों का उत्कृष्ट होगा ना, ये सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि को कितना भी संकलेश हुआ तो मिथ्या दृष्टि के संकलेश इतना तो नहीं होगा, इसलिए 12 कषायों का उत्कृष्ट यहाँ सम्यक दृष्टि को हो ही नहीं सकता। हम चौथे गुणस्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो कंपेरेटिवली जहाँ सम्यक्त्व का उत्कृष्ट है वहीं पर उनका होगा, पर हमारी बात गुणस्थान की नहीं चल रही, ओग से बात चल रही है। प्रेरणा बेन को नहीं समझ में आया यहाँ किसकी बात चल रही है, अभी हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? ऐसा जीव लेना जो सम्यक प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा कर रहा है, ये कौन सा जीव है? चौथे में से मिथ्यात्व में जाने के सन्मुख वाला अंतिम समयवर्ती सम्यक दृष्टि है। अब उसके 12 कषाय का उसका उदय उदीर्णा है कि नहीं है, तो क्रोध मान माया लोभ में से किसी न किसी की है। ये 12 कषाय कौन से लिए मंजू बेन? हाँ छोड़कर, हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधी नहीं है, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोलन है, उनका नया बंध भी है, उसका उदय उदीर्ण अभी चल रही है ना, तो उसका कम से कम कब होगा? विशुद्धि के काल में उसका कम अनुभव उदीर्ण होगी, संकलेश के काल में अधिक होगा। तो यहाँ मिथ्यात्व के सन्मुख वाला जो है सम्यक दृष्टि, उसका सम्यक्त्व का तो उत्कृष्ट हो रहा है, अनुभव उदीर्ण उसकी उत्कृष्ट हो रही है, तो उसी काल में 12 कषायों की जिसकी उदीर्ण हो रही है उसकी उत्कृष्ट होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ कहते बिल्कुल नहीं, नियम से नहीं होती है, वो अनंत गुणाहीन ही होती है, अनुत्कृष्ट ही होती है। तो फिर सवाल है उसकी उत्कृष्ट कब होती होगी? मिथ्या, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के भी उसके उदय उदीर्णा चल रही है, तो नियम से वो मिथ्या दृष्टि के ही उसका उत्कृष्ट पाया जाएगा। मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी, ये जो 16 कषा है, 9 कषा है, इनका उत्कृष्ट कब होगा? संगी पंचेंद्रीय मिथ्या दृष्टि वो पर्याप्त वाला है, ऊपर के गुणस्थानों में गया नहीं, उसका अनुत्कृष्ट ही रहेगा वहाँ। इसलिए जहाँ सम्यक्त्व का उत्कृष्ट है वहाँ 12 कषा है, 9 कषा है, उनका उत्कृष्ट नहीं लिया, अनुत्कृष्ट ही होता है, और वो कितना होता है? तो अनंत गुणाहीन होता है। आगे इसी प्रकार सम्यक मिथ्या तो प्रकृति को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। अब ये तीसरे गुणस्थान वाला है, उदीरक है, और वो भी मिथ्या तो भी सन्मुख वाला लिया है। अब जो मिथ्या दृष्टि के कंपैरिजन में सम्यक मिथ्यात्व है वहाँ तो इतना उत्कृष्ट संकलेश नहीं है जितना पहले गुणस्थान वाले को हो सकता है, उतना तीसरे वाले का नहीं है, तो इसलिए उसका भी अनुत्कृष्ट होगा अन्य प्रकृतियों, वही रूल यहाँ लगो करना। यानी दर्शन होने के तीन के साथ उन्होंने कंपैरिजन कर दिया। अब जो अन्य देखेंगे अभी हम अनंतानुबंधी क्रोध के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला, जब क्रोध की उदीर्णा कर रहा है तो मान माया लोक की उदीर्णा ही नहीं कर रहा, तो किसकी कर रहा है? तो अनंतानुबंधी वाला कर रहा है, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध की उदीर्णा कर रहा है, तो वो मिथ्या तो की भी कर रहा है। तो उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व और तीन क्रोधों की नियम से उदीर्णा करता है। उत्कृष्ट करने वाले के साथ नियम बताया, ऐसा नहीं कहा कि अनंतानुबंधी क्रोध की उदीर्णा करने वाला नियम से मिथ्यात्व की उदीर्णा करता है। ये ऐसा नियम हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि अनंतानुबंधी की उदीर्णा तो हो रही है और मिथ्यात्व की नहीं हो रही है? नहीं होगा, दूसरे गुणस्थान में होता है। और कहाँ होता है? पहले में ऐसा हो सकता है भयंग भाई? पहले गुणस्थान में ऐसा हो सकता है कि अनंतानुबंधी की उदय उदीर्णा चल रही है, मिथ्यात्व की न हो? ऐसा
नहीं होगा, नहीं होगा।
एक अवली में उल्टा होता है, मिथ्या तो की हो रही है अनंतानुबंधी की नहीं, विषय ना करके आया हुआ है। मिथ्या तो की उदीर्णा हो रही है परंतु अनंतानुबंधी की नहीं हो रही। मेरा प्रश्न उल्टा था, अनंतानुबंधी की तो हो रही है पर मिथ्या तो की नहीं हो रही है, वो तो दूसरे में गुणस्थान पलट गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, जो अनंतानुबंधी के क्रोध की उत्कृष्ट की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व और तीन क्रोधों के नियम से उदीर्णा कर रहा है। उत्कृष्ट वाला ये ना, तो वो सासाधन वाला भी नहीं ले सकते, मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट करेगा। जो उनके उत्कृष्ट का उदीरक है या अनुत्कृष्ट का उदीरक है, यानी जो नियम से उदीर्णा करता है, कौन सी वाली होगी? उत्कृष्ट के अनुत्कृष्ट? तो कहते उत्कृष्ट भी हो सकती है, अनुत्कृष्ट भी हो सकती। यदि अनुत्कृष्ट का उदीरक है तो उत्कृष्ट से छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट की उदीर्णा करता है। नौ नौ देखो स्थिति में अभी हमने कभी कभी देखा था, इसकी उत्कृष्ट स्थिति होगी तो दूसरे की कितनी होगी, तो वहाँ कितना हमने उसकी जो रेंज देखी थी पल्ले के असंख्या से भाग इतने रेंज तक कम हो सकता है उसका। अब यहाँ क्या लिखा? सत्संग नौ नौ कषायों का कदाचित
जो बंद करता, अरे उत्कृष्ट देवा करता है उसका जो सेकंड परिणाम है उसमें सत्संग प्रतीत हो जाता है ना, जो हम शाम को देख रहे हैं कि एक परिणाम से दूसरे परिणाम में जाएगा, वहाँ पे भी अनंत गुण हानि हो जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि एक संस्कार से दूसरा संस्कार में चला जाता है।
शाम को कहाँ चल रहा है विषय?
शाम को मिले
शाम
वो आठ और वो देखा था ना,
वो तो हम वहाँ जो देख रहे हैं एक शर्तस्थान पतित से दूसरे शर्तस्थान पतित जाता है तो अनंत गुणा वृद्धि वाला है। वो पर्याय समास में हमने देखा, यानी कितनी शर्तस्थान पतित वृद्धि होती है, एक बार दो बार चार बार, उसमें अनेक बार हो सकता है। यहाँ तो शर्तस्थान है इतनी बात बताई, यानी वो कितनी वृद्धि वाले, वो वृद्धि के प्रकरण में बताएंगे कहाँ कितनी वृद्धि होती है क्या होता है। अपना तो यहाँ विषय क्या है, वो अनुत्कृष्ट कितना है, तो अनंत गुण ये शर्तस्थान पतित वृद्धि वाला यहाँ हानि कहेंगे हम
उसको,
यहाँ तो शर्तस्थान पति थी इतना ही बताया। अब जो अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट कर रहा है वो नौ नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है, यहाँ भी उदय जिसका उदय है उसका उदीरक है कहेंगे। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट का उदीरक है या अनुत्कृष्ट का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट का उदीरक है तो उत्कृष्ट से छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है, यानी उसका अनंत भाग भी कम हो सकता है, असंख्यात भाग कम हो सकता है, संख्यात्वा भाग कम सकता है, संख्यात गुना अनंत गुना भी कम हो सकता है। एक शतस्थान प्रतीत हो गई तो अनंत गुना तक का उसका हो सकता है।
यह क्रोध की द्वादंतानुबद्धि क्रोध की उत्कृष्ट यदि न करता है तो अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण क्रोध में भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो सकता है।
हाँ वही तो बताता है ना।
हाँ वही बताया ना
कि जो अनंतानुबंधी का क्रोध का है उसके मिथ्यात्व और तीन क्रोध में तीनों लिए उसका उत्कृष्ट भी हो सकता है अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। यही तो इस कवि से चल रहा है। इसी प्रकार 15 कषायों को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। अनंतानुबंधी को क्रोध लिखा, फिर मान रखेंगे माया लोग, वैसे अन्य अन्य को रखेंगे। अब स्त्री वेद के उत्कृष्ट अनुभाव की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के ही उत्कृष्ट उदीर्णा होगी स्त्री वेद की। जो उत्कृष्ट का उदीरक है या अनुत्कृष्ट का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट का उदीरक है तो उत्कृष्ट से छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। ये कल बात आई थी ना भाई, स्त्री वेद पुरुष वेद का उत्कृष्ट उदीरणा करने वाला, हमने उसका क्षेत्र और स्पर्शन देखते समय जो बात की थी, अरविंद भाई ने लिख के लाया है उसके बारे में। देखो ये प्रश्न यहाँ निकला था अपना स्पर्शन में, वो सात भाग कैसे होता है उसकी बात अपने चर्चा में आई थी।
छह राज्य
स्पर्शन में आई थी बात। पंचेंद्रियों में आई थी ना बात। स्त्री वेद के संबंध में नाइन्टी सिक्स पर मैं पढ़ रही हूँ। देखो तिरियंचों में 235 का नीचे से तीसरी लाइन। देखो स्त्री वेद और पुरुष वेद के, ये तो जघन्य में पढ़ रही, उत्कृष्ट पढ़ना था अपने ना, सॉरी 93 मैं जघन्य में देखने 93 हाँ नीचे से पांचवी लाइन, वह ओग के समान लिखा है क्योंकि ओग में भी इन्हीं की अपेक्षा से बताई है। अब यहाँ ओग में देखा 92 पेज पर, नीचे से छठी लाइन, यहाँ तो विशेष अर्थ है, मूल में भी देखना योग्य है। यहाँ लिखा है देखो ऊपर से पांचवी लाइन, 92 पेज ऊपर से पांचवी लाइन, स्त्री वेद और पुरुष वेद के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग उसका क्षेत्र हुआ। त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। ये तो 6 भाग कैसे होगा, इस पर अपना प्रश्न चल रहा था, क्योंकि तिरियंचों में स्त्री वेद पुरुष वेद का उत्कृष्ट किसके होता है याद है, हमने देखा था वो 51 पेज पर देखा था निकल 51 ऊपर ही सूत्र में बताया, पहली शुरुआत हिंदी में देखो 8 वर्ष की आयु वाले तथा सर्व संकलेश परिणाम वाले पंचेंद्रिय तिरियंच ऊंट के होती है। अब हम प्रश्न यानी चर्चा ये बात चली थी, ऊंट तो मरकर नीचे 6 राज्य यानी 7वें नरक में तो नहीं जाएगा ऊंट, क्योंकि सिंह ही जाता है 5वें में, तो ऊंट की कहाँ तक चाहेगा। तो यहाँ आपने कौन सी किसमें से ये कहाँ से लिख के लाया, हाँ कहाँ तक जन्म हो सकता है। तो स्त्री वेद पुरुष वेद का उत्कृष्ट उदीर्णा होते समय यानी अनुभाग उदीर्णा होते समय मारणांतिक चौथी पृथ्वी यानी 3 राज्य चौथी पृथ्वी तक हो सकता है, या सनत कुमार 3 राज्यों तक हो, ये लिखा ही नहीं ये वो कहाँ तक, पर उत्कृष्ट संकलेश परिणाम में वहाँ तक जा सकता है क्या तीन राज्य और तीन राज्य मरण में वो लेशा पलट जाएगी। अच्छा, मरणांतिक में वो चलेगा, तो इसलिए नीचे चौथे, हाँ चौथी पृथ्वी तक,
सनत कुमार
ऊपर, सनत कुमार तीन राजे,
तीन राजे ऊपर, तीन राजे नीचे,
हाँ यानी तीन राजे और ऊपर सनत कुमार तक। वो तीन राजे दोनों मिलकर छह हो जाता है, 14 में से 6 भाग, क्योंकि हमने बहुत उस पर चर्चा की थी ना। हाँ। और ये भी अनंतानुबंधी का भी एक समय उन्होंने ओग में घटित किया था, काल में, और आदेश में नहीं लिया था। अंतर में देखा था कि काल में देखा, अंतर में देखा था। देखो अंतर निकालो, दोनों का मिल गया उत्तर तो हम पढ़ेंगे ना उसमें। देखो 81 पृष्ठ पर, ऐसे तो अनंतानुबंधी का जघन्य अंतरकाल कितना देखेंगे हम, अंतर्मूर्त, क्योंकि उदय पलट कर आने की अपेक्षा अंतर्मूर्त देखा था। परंतु नीचे से दूसरी लाइन में क्या लिखा है देखो, इतनी विशेषता है, अनंतानुबंधी का जघन्य कब होता है, हाँ समय को, तो अजघन्य का अंतर हम जब देखते हैं तो समय को क्यों ये जघन्य होगा, या बिना जघन्य के वो अनुदीरक होगा और वापस मिथ्यात्व में आएगा, तब उसका अंतर्मूर्त अंतर्घटित होगा। अजघन्य का अंतर अंतर्मूर्त होगा, परंतु यहाँ नीचे से दूसरी लाइन में क्या लिखा है देखो, इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क के अजघन्य अनुभाग के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है। तो हमने सामान्य से उदय पलटने की अपेक्षा लिखा था, परंतु यहाँ ऐसा है, इन्हें दो मान्यता है कि विशिष्ट गति में विशिष्ट कषाय का ही उदय शुरुआत में होता है। पहले अंतर्मूर्त में कौन सा उदय है, तो नरक में क्रोध का उदय होता है, तिरिंच में माया का, मनुष्य में मान का और देवों में लोभ का। हाँ ऐसे दो मान्यता है कि वहाँ वही नियम रूप से पहले अंतर्मूर्त में उसी कषाय का, फिर बाद में, हाँ यानी ये धवला में ऐसा लिखा है और आचार्यों का ऐसा परंपरागत उपदेश है, यानी ये यति ऋषभ आचार्य के अनुसार ये है, बुद्ध बलि के अनुसार ये नहीं है। तो इन्हें पहले जन्म में अन्य कषाय का उदय हो, यानी क्रोध का, मान लेते हैं कि मान का उदय चल रहा है मनुष्य में, और मान का उदय होते एक समय मरण हो गया और नरक में जन्मा, परंतु क्रोध का होगा, नहीं नहीं
नहीं,
क्रोध का उदय था, क्रोध से मान हुआ, एक समय के लिए मान में रहा और नरक में गया, तो फिर क्रोध का उदय हुआ। नहीं नहीं, ओग की बात, नारकी में ऐसा नहीं घटित होगा, नारकी तो नारकी रहा, वहाँ एक समय घटित नहीं होगा, ओग की अपेक्षा होगा, क्योंकि हम यही चर्चा कर रहे थे, यदि सामान्य से वो व्याघात की अपेक्षा लेते हैं तो एक समय किसी भी गति में घटित होना चाहिए था, यहाँ ओग में लिया और किसी भी आदेश में तो नहीं लिया था, आदेश में उन्होंने अनंतानुबंधी में एक समय वाला घटित नहीं किया था, 12 कषाय में तो घटित होता था, क्योंकि वहाँ तो विशुद्धि और संकलेश के पलटने से होती है आदेश में। यानी क्रोध का उदय मनुष्य में था पहले,
क्रोध का
उदय बंद हुआ
और
मान का शुरू हुआ मरण के समय, यानी जीवन का अंतिम समय कहेंगे हम, मान का उदय रहा मनुष्य में और मन मरकर नरक में जाते ही क्या होगा, फिर क्रोध का उदय चालू होगा।
तो ये चारों में होना चाहिए ना,
कौन सा
प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण प्रज्वलन,
चारों में कैसे होगा,
क्योंकि वहाँ पे भी वहाँ पे अनंतानंद भी क्रोध का है, वहाँ पे वो तीनों का है,
वो तीनों का जघन्य है क्या,
अजघन्य की बात है ना एक समय की,
परंतु वो अजघन्य का
तो वहाँ पे जाके उसका,
परंतु उनका अजघन्य का तो ऐसे भी जघन्य होने पर घटित हो सकता है, नहीं समझे? वो तो आदेश में भी घटित होता है। बारह कषायों का अजघन्य का अंतर एक समय आदेश में भी घटित होता है, कैसे?
सही नहीं,
उसका जघन्य कब होगा? बारह कषायों का जघन्य कब होगा? आदेश, आदेश में
अप्रत्यक्ष का चौथे
समय दृष्टि है। हाँ। जब ज्यादा विशुद्ध होगा तो जघन्य होगा।
हाँ।
और फिर अजघन्य होगा।
हाँ।
वो एक समय वहाँ घटित होता ही है।
हाँ।
उसके लिए कोई प्रश्न नहीं था, वो तो सर्वत्र एक समय घटित किया है उन्होंने। संज्वलन में तो, संज्वलन में ओघ में नहीं घटित होगा, आदेश में होगा एक समय का। ओघ में क्यों नहीं होगा? क्योंकि संज्वलन का जघन्य तो क्षपणा में होता है, तो ओघ में या मनुष्य में तो संज्वलन का जघन्य अजघन्य का अंतर वैसा नहीं घटित होगा एक समय वाला। हाँ, अनुदीर्णा हो गई उस अपेक्षा से हम अंतर कह सकते हैं वहां पर। तो ये उदय पलटने की यानी वो गति बदलने की अपेक्षा से यहाँ लेना है, यानी मनुष्यों में क्रोध से मान हुआ, एक समय तक मान रहा, फिर नरक में जन्मा तो क्रोध हुआ, इसलिए वो अंतर हुआ उसका। तो ऐसे हर एक कषाय को अलग अलग गतियों में उत्पन्न करा के हम अंतर देख सकते हैं। हाँ, मान मैं हर एक का अपना अपना अंतर देख सकते। अब यहाँ आते अपना, ये दोनों ही का उत्तर उन्होंने लाया था लिख के, उसकी बात हो गई अपनी। अपना ये विषय जो चल रहा है, हाँ मैंने, हाँ तीन नीचे, नीचे मरकर नरक में जाने वाले, ऊपर देवों में जाने वाले। इनका कहना देवों में, हम यही बात सोच रहे थे कि देवों में कैसा लेना संक्लेश परिणामों में, तो मारणांतिक में है, बाद में वो तो लेशा पलट जाएगी जहाँ उत्पन्न होना है, क्योंकि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में लेशा पलटती है। सनत कुमार तो पद्म वाली होनी चाहिए, हाँ जगह ने पद्म लेना। सनत कुमार तक, क्योंकि डेढ़ राजू तक सौदर में ईशान है, और डेढ़ राजू सनत कुमार महेंद्र। हाँ,
कितना है बराबर? आठ साल का होना चाहिए तभी पांडांतिक होना चाहिए, तो इतना ये छह राज्य
यथायोग्य जो कंडीशंस है वो तो लागू होगी होगी उसमें। आप कहेंगे उतनी कम आयु से आना चाहिए, हो क्या हो सकता जहाँ घटित करना है? हाँ, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे 105 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ। स्त्री वेद के उत्कृष्ट अनुवाद की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है, जो उत्कृष्ट का उदीरक है या अनुत्कृष्ट का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट का उदीरक है तो उत्कृष्ट से छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। 16 कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट का उदीरक है या अनुत्कृष्ट का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट का उदीरक है तो उत्कृष्ट से छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। 6 नौकषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार पुरुष वेद को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। यहाँ सम्यक सम्यक मिथ्यात्व को क्यों छोड़ा? हाँ, उत्कृष्ट है तो त्रिवेद का उत्कृष्ट के साथ बाकी सभी प्रकृतियां लिए, सम्यक सम्यक तो उन सम्यक विख्यातों को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? नहीं उसकी बात कहाँ है, सम्यक प्रकृति की वो उदीरणा, त्रिवेदी जीव सम्यक प्रकृति की उदीरणा कर सकता है कि नहीं?
अनुदीर्घ
हाँ, तो क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश किसके होता है?
मिथ्या दृष्टि
के, मिथ्या दृष्टि के होता है। तो त्रिवेद की भी उत्कृष्ट कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि करेगा। पुरुष वेद की भी उत्कृष्ट उदीरणा कौन करेगा? सर्व संकलेश परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि करेगा। इन्हें सभी कषायों की जो मिथ्या दृष्टि में लिया ना, तो बाकी तो 16 कषाय और 9 कषाय तो आ ही गए, मिथ्या तो भी आ गया, परंतु इतने मिथ्या दृष्टि के जो संकलेश है अभी सम्यक प्रकृति की उदीरणा
नहीं है।
वेदक समय दृष्टि कर समय मिथ्या तो की तीसरे वाले के, तो उसकी उदीरणा ही नहीं है इस बार, इसके साथ नहीं, उत्कृष्ट उदीरणा के साथ नहीं है, अनुत्कृष्ट के साथ तो ले सकते हैं ना, उसकी होगी उसकी भी। अब नपुसक वेद के उत्कृष्ट अनुभाव की उदीरणा करने वाला मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है। अभी मिथ्यात्व का लिया ना यहाँ पर, नियम से जो उत्कृष्ट का उदीरक है या अनुत्कृष्ट का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट का उदीरक है तो उत्कृष्ट से 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। यानी नपुसक वेद का भी उत्कृष्ट किसके होगा? मिथ्या दृष्टि के लिए।
ये भी सातवें दारक वाला लिया है ना, उत्कृष्ट वाला।
हाँ वो स्वामित्व में देखा था ना, हो गया 16 कषाय और 4 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट का उदीरक है या अनुत्कृष्ट हुआ है, अनुत्कृष्ट करना। और यदि अनुत्कृष्ट का उदीरक है तो उत्कृष्ट से 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। यहाँ हास्य रति को छोड़कर बात, क्योंकि नपुसक वेद का उत्कृष्ट लेना था, हास्य रति का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। 6 स्थान पतित नहीं कहा, क्योंकि उस समय तो वहां पर जो सातवें नरक में लिया हमने, तो अनंत गुणाहीन वाला अनुत्कृष्ट अनुभाग होगा उसका। हास्य के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करने वाला मिथ्यात्व और रति का नियम से उदीरक है। हास्य के साथ तो रति का होगा ही होगा, तो दोनों का ही नियम से उदीरक है। तो मिथ्या दृष्टि में ही सब लिए ना, सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट से 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। अब हास्य के साथ ही 16 कषायों का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। भय और जुगुप्सा कदाचित उसका कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, और यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। यहाँ भी डायरेक्ट 6 स्थान पतित नहीं कहते हुए अनंत गुणहीन वाला ले लिया, हास्य और रति के साथ ये भय दुर्गा। पुरुष वेद का नियम से उदीरक होकर हास्य के साथ पुरुष वेद का नियम से क्या कहें?
नियम से उदीरक
क्यों?
ये ऊपर के स्वर में
सहस्रार में लेना है ना, यहाँ पर उसकी उत्कृष्ट उदीरना सहस्रार में थी। तो पुरुष वेद का नियम से उदीरक होकर कितनी होगी? अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाव से उदीरना करता है। यहाँ उत्कृष्ट होगा ऐसा नहीं कहा, क्यों? पुरुष वेद का उत्कृष्ट कहाँ पाया जाएगा? हाँ, मिथ्या दृष्टि। इसी प्रकार रति को मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। अब अरति की बात करें, अरति के मैंने अरति का शोक का एक साथ ले लेंगे, मैंने तो अरति के एक को एक को एक बार लेना। अरति के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व नपुसक वेद और शोक का नियम से उदीरक है। वहां तो पुरुष वेद को नियम से कहा था, यहाँ नपुसक वेद को लिया। ये सातवें नरक का नार के लेना, जो इनके उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। सोलह कषाय भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार शोक को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। मंजू बहन ख्याल में आ रही बात? ये ओग से बात चल रही है। हास्य और रति का उत्कृष्ट कहाँ देखा? तो सहस्रार में देखा, और वहां तो पुरुष वेद ही होता है इसलिए उसका भी नियम बताए। अरति और शोक का तो
नरक में
है, सातवें नरक में मिथ्या तो नपुसक वेद, उसका तो नियम से होगा। तो उत्कृष्ट के साथ उत्कृष्ट भी होगा या छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। अब भय के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात् और नपुसक वेद का नियम से उदीरक है। वो भी लिया सातवां नरक। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। सोलह कषाय अरति शोक और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। क्योंकि अरति शोक का उदय हो ही, ऐसा कोई नियम नहीं है इस समय भय के साथ।
यहाँ पे हास्य रति का भी उदय हो सकता है।
हाँ ना, हाँ, सातवें नरक में हास्य रति का उदय
हो सकता है, पर उत्कृष्ट के साथ हास्य रति का भी हो सकता है।
वो तो अनुत्कृष्ट होगा उसका, उदय नहीं है वो बात नहीं, उदय उसका उत्कृष्ट नहीं होगा।
अच्छा, मैं सोचा भाई के साथ उदय हो सकता है, उत्कृष्ट के साथ।
उत्कृष्ट के साथ उसका अनुत्कृष्ट रहेगा, ये जरूरी नहीं कि उसका उत्कृष्ट हो। क्योंकि भय का जहाँ उत्कृष्ट है वहाँ तो अरतिशोक का उत्कृष्ट ले सकते हैं और अनुत्कृष्ट को उसका छह स्थान पतित ले लेंगे।
नहीं, यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, भय का उत्कृष्ट है वहाँ पे, मैं सोच रहा था उसको जुगुप्सा अरति और शोक का उदय होना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है।
होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि भय और जुगुप्सा का भी चेंज होते रहता है, हास्य रति शोक अरति का भी चेंज होता रहता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना उसके साथ। देखो यहाँ जो आती है ना बात, उससे अपना प्रश्न सॉल्व होना चाहिए। यहाँ लिखा है हास्य और रति का कदाचित उदीरक है, होता ही नहीं ऐसा नहीं कहा, और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो अनंत गुणहीन अभी ये बता दिया, यहाँ षष्ठान नहीं कहा, अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार जुगुप्सा को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये तो उन्होंने ये सारी जो बातें अलग अलग प्रकृतियों की बताई है वो ओव की अपेक्षा बताई, जहाँ जो घटित होता है। अब यही बात आदेश में बताएंगे, तो पहले में पहले नारकियों की बात लेते हैं। हमेशा आदेश में पहले नारकियों की बात करेंगे, फिर तिरंतों की, फिर मनुष्य की, फिर देवों की। तो नारकियों में मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला 16 कषाय और 6-9 कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। 6-9 कषाय में किसको नहीं लिया मंजू बहन? हाँ, नहीं लिया, किसी वेद पुरुष वेद नहीं लिया, क्योंकि नारकी में तो होते ही हैं। और एक किसको टाला? हास्य, आप क्या कहते हैं? हाँ, नपुंसक वेद, क्योंकि यहाँ उदीरक और अनुदीरक की बात चल रही है।
नियम से उदीरक,
वो तो नियम से उदीरक होगा। यहाँ 16 कषाय और 9 कषाय, 6-9 कषाय को ले लिया, तीनों वेद को इसमें से निकाल दिया और इनकी बात कहते कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है? और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। नपुंसक वेद का क्या कहा?
नियम
से उदीरक, जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। अब सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला ये कौन सा जीव होगा? मिथ्यात्व के सन्मुख सम्यक दृष्टि, उत्कृष्ट संक्लेश के साथ वह जीव 12 कषाय और 6-9 कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो ये उदीरक कदाचित है कि नहीं वो बात है, और यदि है तो अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। ऐसा क्यों कहा लक्ष्मी बहन? समय दृष्टि है इनका, जो 12 कषाय और 6-9 कषायों का उत्कृष्ट तो मिथ्या दृष्टि के होगा, यहाँ वो समय दृष्टि है तो नियम से अनुत्कृष्ट होगा। अब नपुंसक वेद का नियम से उदीरक है क्योंकि नारकी है, तो नियम से होगा ही होगा। जो अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है क्योंकि ये समय दृष्टि है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी सम्यक मिथ्यात्व के मुख्य उत्कृष्ट के साथ अन्य को लगाना है। वहां भी वो उदीरक हो गए तो अनुत्कृष्ट हो गए। अब अनंतानुबंधी क्रोध के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व 3 क्रोध और नपुंसक वेद का नियम से उदीरक है। जहां अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है वहां अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संज्वलन क्रोध का उदय नियम से होता है। अब यहाँ उत्कृष्ट की बात है तो वहां मिथ्यात्व का भी होगा ही होगा, उदीरक तो होगा ही होगा। नपुंसक वेद का तो नरक की अपेक्षा नियम से उदीरक है। अब जो उदीरणा करने वाला है वो कितने की करता है? तो जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। 6-9 कषायों का, नपुंसक वेद की तो बात बता दी, 6-9 कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उद्गीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उद्गीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उद्गीरक है, उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उद्गीरणा करता है। इसी प्रकार 15 कषायों को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये नारकियों में हम सन्निकर्ष गठित कर रहे हैं। अब नारकी में ही नपुसक वेद के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करने वाला मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को इतने संकलेश हो गए। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। 16 कषाय और 69 कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है उत्कृष्ट की अपेक्षा शहस्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरणा करता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, हर जगह मिथ्या दृष्टि का किसी एक मिथ्यात्व का कहो, अनंतानुबंधी का कहो, नपुसक वेद का कहो, जहाँ उत्कृष्ट हो कब है उत्कृष्ट संकलेश। तो जिसके उत्कृष्ट संकलेश है तो अन्य प्रकृतियों के भी उत्कृष्ट उदीरणा हो सकती है वहाँ पर, एक बात तो ये। तो उत्कृष्ट नहीं तो अनुत्कृष्ट भी हो सकती है, क्यों उसका एक बार भी कुछ कम हो गया अनुभाग तो भी उसका क्या कहेंगे, वो षष्ठान पतित अनुत्कृष्ट हो सकता है। यानी एक ही परिणाम के कारण अन्य अन्य जो वेदों की या अन्य अन्य जो प्रकृतियों की उदीरणा होती है उसमें वो रेंज होगी, उत्कृष्ट से कितना कम लेना नहीं, अनंत गुना तक की रेंज है। एक षट्स्थान हुआ ना,
एक ही षट्स्थान,
और जहाँ कहीं अन्यत्र लिया है वहाँ तो डायरेक्ट अनंत गुणा है।
तो वहाँ पे परिणामी
देखो, जहाँ अनंत गुणाहीन अकेला एक ही लिया, षट्स्थान नहीं लिए, तो सम्यक दृष्टि के जहाँ पर लिया है कहीं पर, सम्यक प्रकृति की बात करते हैं तो सम्यक प्रकृति के भले उत्कृष्ट है परंतु वहाँ अन्य प्रकृतियों की क्या होगी, अनंत गुणाहीन होगी, क्योंकि उनका उत्कृष्ट किसके होगा, मिथ्या से के होगा। तो वहाँ षट्स्थान की बात नहीं ली, जहाँ षट्स्थान किसमें, जहाँ उत्कृष्ट भी हो सकता है तो वहाँ अनुत्कृष्ट भी होगा, परंतु ऐसा अनुत्कृष्ट नहीं होगा कि जघन्य के बराबर हो जाए, उत्कृष्ट से थोड़ा कम वाला अनुत्कृष्ट होगा वह, इसलिए वो षट्स्थान पतित ले लिया। तो ये नपुसक वेद का हमने देख लिया ना, ये हो गया ना अपना 267 पैराग्राफ। हाँ, अब हास्य के नारकी की बात चली है। हास्य के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करने वाला मिथ्यात्व नपुसक वेद और लति का नियम से उदीरक है। हमने देखा है कि हास्य लति का उदय ऑप्शनल, यानी उसके साथ वही कॉम्बिनेशन है, दो युगल में से हास्य रति का होगा या अरति शोक का होगा, इसलिए नियम से उदीरक का। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता। अब वो हास्य वाला ही 16 कषाय भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है। उत्कृष्ट भी हो सकता है क्योंकि मिथ्या दृष्टि लिया ना यहाँ। इसी प्रकार रति को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, तथा इसी प्रकार अरति और शोक को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसमें भी ऐसे ले। अब भय की बात, भय के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व और नपुंसक वेद का नियम से उदीरक है। भय के साथ जुगुप्सा को नियम से नहीं कहा, क्योंकि दोनों का अलग अलग हम नहीं कहते। किसी के भय का उदय है, किसी की जुगुप्सा का है, किसी के दोनों का है, किसी के दोनों का भी नहीं। तो मिथ्या तो नपुंसक तो नियम से होगा। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। सोलह कषाय और पांच नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। सोलह कषाय और पांच नौ कषाय लिए। पांच क्यों लिए?
तो भय का तो
भय के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए छह में से रिमेनिंग पांच। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार जुगुप्सा को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए। अरे वहाँ पहले और उसके आगे की वैसी कोई बात नहीं है, यहाँ काल की बात नहीं चल रही ना। हाँ, रति का उत्कृष्ट किसके होगा तो उसमें तो, परंतु हर एक नरक में तो
अलग है।
हाँ, उत्कृष्ट के साथ अन्य का सन्निकर्ष की बात चल रही है। तीरियंतों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और सोलह कषायों का भंग ओघ के समान है। यानी जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट होगा, सोलह कषाय नौ नौ कषाय को ही लेना,
उत्कृष्ट होगा अनुत्कृष्ट।
सम्यक्त्व का जहाँ उत्कृष्ट है
बारह कषाय का उत्कृष्ट,
वहाँ बारह कषाय लेना है।
बारह कषाय और छह,
और छह लेना का नौ लेना,
नौ लेना पड़ेगा।
हाँ, नौ लेना तो उसका तो नियम से अनुत्कृष्ट होगा जो अनंत गुणाहीन होगा। समय मिथ्यात्व में भी आया, सोलह कषाय में तो हमने लगा लिया सम्यक्त्व के साथ सोलह कषाय लेना है तो उसका तो अनुत्कृष्ट है ना, बाकी का भी अनुत्कृष्ट है, अनंत अनुबंधी तो होगा नहीं। ये सोलह कषायों का भंग है, सोलह अनंत अनुबंधी के साथ अन्य का लगाना है, वो तो हमने सब लगा लिया। ओके समाप्त। अब तीर्यंचों में ही स्त्री वेद के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। सोलह कषाय, अब ये स्त्री वेद की बात चल रही, सोलह कषाय और छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, यानी जिसका उदय है उसका उदीरक होगा, इसलिए कदाचित शब्द डाला, और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है। यानी जहाँ स्त्रीवेद का उत्कृष्ट है वहाँ सोलह कषाय छह नौ कषाय का कदाचित उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार पुरुष वेद और नपुंसक वेद को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। अभी तीर्यंचों में हास्य की बात। हास्य के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला मिथ्यात्व और रति का नियम से उदीरक है। अब यहाँ कोई वेद नहीं लिया नियम रूप से। जो उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। सोलह कषाय तीन वेद भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। 16 कषाय में एक एक कषाय का उदय पलटता है। तीन वेदों में एट टाइम तो कोई एक होगा, भय और जुगुप्सा का भी पलटता रहता है, इसलिए कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है, और यदि अनुत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभव की उदीरना करता है। इसी प्रकार रति को मुख्य कर सन्निकर से जानना चाहिए तथा इसी प्रकार अरति करो, अरित हुआ अरति और शोक को मुख्य कर सन्निकर से जानना चाहिए। भय के तिरियंचों में भय के उत्कृष्ट अनुभव की उदीरणा करने वाला मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि को ही वो सर्वसंक्लेश परिणाम है। जो उत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभव का उदीरणा करता है। 16 कषाय और 8-9 कषायों का कदाचित उदीरक है। 8 क्यों लिए?
सभी ऑप्शन ले रहे
भय, हाँ, को निकाला है। और कदाचित अनुदीरक है, यदि उदीरक है तो उत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है या अनुत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभव का उदीरक है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभव की उदीरणा करता है। इसी प्रकार जुगुप्सा को मुख्य कर सन्निकर से जानना चाहिए, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है पर्याप्तकों में स्त्रीवेद नहीं है और योनिनियों में स्त्रीवेद ध्रुव करना चाहिए। यही रुकेंगे अभी हम, क्योंकि अभी आगे चलेगा एक्सपीरियंस का ये पूरे पेज पर। जावानी के ज्ञान ने तुझे रोकालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा वेत हो नो। अश्विन भाई
नमो सीताराम नमो सीताराम नमो जन नमो जन नमो नमो सीताराम।